अगला दिन पलक झपकते ही बीत गया था। सहगल निवास में रूपाली जी पहले ही चिड़ी हुई थी कि उन्हें सब अकेले संभालना होगा। अक्षय और अन्वय के कानपुर जाने की खबर सुनकर वे और ज्यादा भड़क गई थीं, पर अभिजीत जी के तर्कों और दलीलों के आगे जहर के घूंट पीकर खामोश रह गई थीं। मेट की हेल्प से उन्होंने होली के लिए पकवान बना लिए थे। ये पकवान पहले होलिका में चढ़ने थे, फिर आस पड़ोस में बांटने भी थे। सहगल निवास में ज्यादा रौनक नहीं थी, पर शुक्ला निवास में होली की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही थी। ये होली आहाना और दीशांत दोनों के लिए बेहद खास थी। निशांत और अंतरा एक्साइटेड थे कि मिलकर सबको खूब रंग लगाएंगे। पल्लवी अपने घर चली गई थी, वहां भी दिन में होली के अनेकों पकवान बनाए गए थे। आहाना दिन में जयंती जी संग कामों में व्यस्त थी। होलिका दहन के बाद पल्लवी उसे और अंतरा को अपने संग ले गई थी। आहाना को अक्षय से बात करने का मौका नहीं मिला और ना ही अक्षय ने खुद उसे कोई मैसेज या कॉल किया, इसलिए आज दोनों की कोई बात नहीं हुई। अगली सुबह घड़ी सुबह के 6 बजा रही थी। शुक्ला निवास में कुछ आगंतुक पधारे थे। जयेश जी आंगन में मेहमानों संग बैठे थे। जयंती जी उनके स्वागत सत्कार में लगी चाय पानी की व्यवस्था कर रही थी। दृशांत भी वहीं था। सब लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि एक जोड़ी कदमों ने घर में प्रवेश किया। इसके साथ ही आहाना की अलसाई हुई आवाज वहां गूंज उठी। माँ, चाय दे दीजिए, हमें हमारा सर दर्द कर रहा है। अचानक आई आहाना की आवाज़ ने घर वालों समेत उन आगंतुकों का ध्यान भी अपनी ओर खींचा। उसने लूज सी टी शर्ट और प्लाजो पहना हुआ था और ऊपर से स्टॉल डाल लिया था। इस स्टॉल के पीछे कहीं मंगलसूत्र अलसाया हुआ सा उबासी ले रहा था। बिखरे बालों को यूं ही समेट कर जुड़े की शक्ल दी हुई थी। इन बालों से निकलती शैतान लटे कभी उसके चेहरे को चूमती तो कभी खिलखिलाते हुए गर्दन पर बिखर जाती। मांग में हल्का सा सिंदूर था जो उसके शादीशुदा होने की गवाही दे रहा था। कलाइयों में दो दो चूड़ियां 8 खेलियां दिखा रही थीं। नींद से बोझिल पलकें बार बार झपक रही थीं। आंखें भी ठीक से नहीं खुल रही थीं। उस हसीन चेहरे पर दुनिया जहां की मासूमियत समेटे, वो इस बिखरे बिखरे वजूद में भी किसी की धड़कनों को बढ़ाने में कामयाब रही थी। इस बात से अनजान की किसी की तड़पती प्यासी निगाहें उसके वजूद पर ठहरी हैं, आहाना अपनी हथेली से हल्के हल्के से अपने सर को दबा रही थी। आहाना पर नजर पड़ते ही सबके जहन से आगंतुकों का ख्याल पूरी तरह से निकल गया। सारा ध्यान आहाना पर लग गया। बेटा, आप सुबह सुबह यहाँ कैसे चली आई? अकेली आई हैं आप? अंतरा कहाँ है? जयंती जी की चिंता भरी आवाज़ आहाना के कानों में पड़ी। आहाना ने अपनी नींद से बोझिल पलखों को उठाया। उसकी उन बड़ी बड़ी सुर्ख आंखों में अब भी खुमारी छाई थी। उसने जबरदस्ती आंखों को खोलते हुए उन्हें देखा और हौली से मुस्कुरा दी। हमारी नींद खुली तो चाय की तलब होने लगी और हम आपके हाथों की चाय की तलाश में यहाँ चले आए, पर अंतरा सो रही है। हमने कह दिया है बाद में आ जाएगी। आप अकेली क्यों आई बेटा, और ये आपने अपना सर क्यों पकड़ा हुआ है? जयेश जी ने कुछ परेशान नजर आते हुए सवाल किया। हमारा सर बहुत भारी हो रहा है, नींद पूरी नहीं हुई, शायद इसीलिए। वहाँ वो दोनों हमें सोने नहीं दे रहे थे तो हम घर चले आए। आहाना ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया और साथ ही उन दोनों को याद करते हुए बुरा सा मुंह बना लिया। अभी वो चुप हुई ही थी कि जयंती जी की तलख आवाज उसके कानों से टकराई। और सारी सारी रात जागो, हम तो जानते ही थे तीनों साथ हैं तो जरूर सारी रात जागरण करेंगी और अगले दिन सर पकड़कर बैठ जाएंगी। उनके लिए ये कोई नई बात नहीं थी, अक्सर ऐसा होता ही रहता था। पुरानी नाराजगी लबों पर आकर ठहरी थी और आहाना को ताना मारने से भी वे पीछे नहीं रहीं। उनका तन सुनकर आहाना ने निचला होंठ बाहर निकालकर क्यूट सी शक्ल बनाई और भौहों को तानते हुए बोली, हमारी क्या गलती है माँ, अंतरा और पल्लवी ने हमें सोने नहीं दिया। 4 बजे जाकर दोनों सोई हैं और अभी भी पूरे बेड पर पसर कर सोने में लगी हैं। क्या कर रही थी तुम तीनों रात के 4 बजे तक जागकर? इस बार दृशांत ने चौंकते हुए ताज्जुब से सवाल किया और भौहें से कोड़कर उसे देखने लगा। आहाना ने तपाक से जवाब दिया, मूवी देख रही थी दोनों, और साथ में हमें भी बिठाया हुआ था। अपनी मजबूरी बताते हुए आहाना ने दुखी चेहरा बनाया, फिर मुंह बनाते हुए शिकायती लहजे में बोली, हम बता रहे हैं भैया, अपनी बीवी को समझा लीजिए, आजकल बहुत परेशान करने लगी है, अपने साथ साथ हमें भी बिगाड़ रही है। मेरी बीवी पहले तुम्हारी दोस्त है, दृशांत ने भी तुरंत ही नहले पर दहला दे मारा और आहाना मुंह बिछोड़ कर रह गई। फिर उसने निगाहें जयेश जी की ओर घुमाई और बच्चों जैसे मुंह फुलाते हुए बोली, पापा देख लीजिए, मम्मी और भैया हमें तंग कर रहे हैं। एक तो पहले ही हमारा सरदर्द से फट रहा है, ऊपर से यहाँ किसी को हमारी फिक्र नहीं है, तब से बस हमसे सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं और तंज कस रहे हैं। पापा की परी ने दोनों की शिकायत लगा दी थी। उसकी ये मासूमियत भरी प्यारी प्यारी हरकतें देखकर किसी के लबों पर कातिलाना मुस्कान उभर आई थी। कोई आगे कुछ कहता या बात आगे बढ़ती, इससे पहले ही एक शरारत से भरी चंचल आवाज ने सबका ध्यान आकर्षित किया, नमस्ते भाभी। ये शब्द सुनते ही आहाना का फ्यूज उड़ गया। उसने चौंकते हुए आवाज की दिशा में निगाहें घुमाई। जैसे ही नजर सामने सोफे के पास खड़े अन्वय पर गई, उसकी आंखों की पुतलियां आश्चर्य से फैल गईं। अन्वय इस वक्त यहाँ बेचारी को गहरा सदमा लगा था और अपनी हरकतों पर वो शर्मिंदा सी हो गई थी। वो सकपकाते हुए उस पर से निगाहें हटा ली। नमस्ते, आप यहाँ का बेचारी की हालत ये थी कि जुबान लड़खड़ा गई थी और शब्द भी बिखरने लगे थे। उसने घबराहट में अपनी आंखों की पुतलियों को घुमाया और नजर अनजाने ही अन्वय के बगल में खड़े अक्षय पर चली गई। आगे के शब्द उसके गले में अटक कर रह गए। नींद की सारी खुमारी उसके सर से एक झटके में उतर गई थी। अक्षय को सामने देखकर उसका चेहरा फक सफेद पड़ गया था। वो एकदम से सावधान की अवस्था में खड़ी फटी आंखों से स्तब्ध सी उसे तकने लगी थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अक्षय और अन्वय यहाँ आएंगे। बेचारी हैरान थी, या यूं कहें कि उन्हें अचानक अपने सामने देखकर सदमे की स्थिति में थी। तो ज्यादा अच्छा होगा, बाकियों को भी अब उन दोनों के यहाँ होने का आभास हुआ और माथे पर कुछ लकीरें खिंच गईं। खासकर जयंती जी, आहाना के इस तरह साधारण कपड़ों में बिना किसी साज श्रृंगार के उनके सामने आने पर कुछ विचलित हो गईं। आखिर अभी उनकी शादी को ठीक से 20 दिन भी नहीं हुए थे, उनका परेशान होना लाजमी था। अक्षय गहरी निगाहों से आहाना को देखते हुए दिलकशी से मुस्कुराया। उसकी नजरों का असर कुछ यूं हुआ कि आहाना सहर उठी और उसने हड़बड़ाते हुए उस पर से निगाहें हटा ली। अनु बेटा, आप अपने कमरे में जाकर नहा धोकर तैयार हो जाइए, हम आपकी चाय लेकर आते हैं। नहा लेंगी तो सर दर्द आराम होगा। जयंती जी अभी उसकी संकट मोचक बन गई थी। बेबी किसी तरह यहाँ से निकलने की फिराक में ही थी, काफी शर्मिंदा थी और ऑकवर्ड भी लग रहा था। जयंती जी ने उसे यहाँ से निकलने का बहाना दे दिया था। आहाना ने शिष्टाचार वश अक्षय के आगे हाथ जोड़ दिए और अगले ही पल वो हड़बड़ी में सीढ़ियों की ओर भाग गई। हम माफी मांगते हैं उनकी तरफ से, उन्हें मालूम नहीं था कि आप आने वाले हैं, आपके आने से अनजान थी इसलिए ऐसे व्यवहार कर गई। आहाना के जाते ही जयंती जी ने उसके तरफ से माफी मांगी। अक्षय ने सौम्य स्वर में जवाब दिया, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं मम्मी जी, हम समझते हैं और इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई। इट्स ओके, अपने घर में अगर वो खुलकर नहीं रहेंगी तो कहाँ रहेंगी, फिर हम ही गलत वक्त पर यहाँ पहुँच गए और आप सबको परेशान कर दिया, उनकी कोई गलती नहीं है। नहीं बेटा जी, परेशानी वाली तो कोई बात नहीं, आप वक्त निकाल कर आज के दिन यहाँ आए, हमारी बात का मान रखा, यही बहुत बड़ी बात है। हमें तो आप दोनों को यहाँ देखकर बहुत प्रसन्नता हुई।
जयेश जी ने बड़े ही प्यार, अप्रेपन व मोहब्बत से उनके यहाँ आने पर अपनी खुशी का इजहार किया। सब वापस अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और जयंती जी रसोई में चली गईं। अपने कमरे में लौटी आहाना की नींद के साथ अब चैन और दिल का करार भी लूट चुका था। चेहरे पर घबराहट के भाव लिए वो कुछ पल बेचैनी से कमरे में चहलकदमी करती हुई कभी परेशान सी अपने नाखूनों को चबाती तो कभी लबों को दांतों से काटने लगती तो कभी नीचे जो हुआ सब याद करते हुए खींचते हुए अपने बालों को नोचने लगती। कुछ देर तक यही उपक्रम चलता रहा, फिर झल्लाते हुए वो बेड पर मुंह के बल जा पड़ी और फ्रस्ट्रेशन में तकिए में मुंह छुपाए गद्दे पर मुक्के बरसाने लगी। बेचारी अक्षय के सामने कितनी शर्मिंदा हो गई थी, अब तो उसे फेस करने से भी घबराने लगी थी। अभी वो नीचे मिले उस सदमे से बाहर भी नहीं आई थी कि एक और मुसीबत उसके दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और साथ में दृशांत की आवाज भी आई, अनुगुड़िया दरवाजा खोल, कहीं वापस सो तो नहीं गई। वाह, क्या अंदाज़ा लगाया था। आहाना को ये सवाल किसी मजाक से कम नहीं लगा था। जो उसके साथ हुआ उसके बाद वो सो सकती थी भला। मुँह नाक से कोड़ते हुए वो पलंग से नीचे उतर गई। जैसे ही दरवाज़ा खोलकर नज़रें सामने की ओर उठाई, सदमे से उसकी आंखें फैल गईं। जिस दुश्मन जान ने उसका चैन छीन लिया था और जिसके सामने जाने से वो बचना चाह रही थी, वो तो इस वक्त उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया था। आहाना अचंभित सी फटी आंखों से सामने खड़े अक्षय को देख ही रही थी कि दृशांत की हैरानी भरी आवाज उसके कानों से टकराई, गुड़िया ये क्या हाल कर रखा है तुमने अपना। दृशांत की आवाज कानों में पड़ने पर जैसे आहाना होश में लौटी, ध्यान खुद पर गया तो बेचारी एकदम से गड़बड़ा गई। दौड़कर जाकर बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाकर गर्दन में लपेटा और चिड़िया के घोंसले बने बालों को समेटकर ठीक से जुड़ा बना लिया। एक बार फिर वो अक्षय के आगे एम्बेरस्ड हो चुकी थी, अब तो किसी अपराधी जैसे सर झुकाए बेचैनी से हाथों की उंगलियों को आपस में उलझा रही थी। दृशांत के पास खड़ा अक्षय उसे देखकर मंद मंद मुस्कुराता रहा। सब समझ रहा था कि उसके इस अचानक दिए सरप्राइज ने आहाना को बुरी तरह फंसा दिया और अब उसकी शर्मीली टैगोर उसका सामना करने से कतरा रही है। अनु, अक्षय जी फ्रेश हो जाएं तो तू भी फ्रेश होकर नीचे आ जाना, मम्मी ने चाय नाश्ते के लिए नीचे बुलाया है। दृशांत के शब्द आहाना के कानों में पड़े और उसने चौंकते हुए हैरानी से दृशांत को देखा। आंखों में एक सवाल साफ झलक रहा था कि वो यहाँ क्यों फ्रेश होगा, जिसे समझते हुए दृशांत ने आगे कहा, माँ ने कहा है तुम्हें ध्यान देना, इन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं और जरा जल्दी नीचे आना। आहाना ने अब मजबूरी में सहमति में सर हिला दिया। दृशांत के जाने के बाद उसने चोर निगाहों से अक्षय को देखा और उसे अपनी ओर देखता पाकर एकदम से गड़बड़ाते हुए अपनी निगाहों को झुकाकर फर्श को घूरने लगी। कमिंग सून, अगले भाग में क्या होगा जानने को उत्सुक है तो जल्दी से बताइए कि कैसा लगा आपको अक्षय का सरप्राइज विजिट।